जय ओम विष्णुपाद। परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। ब्रज भूमि वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, पंडरपुर धाम की, गंगा मैया जमुना मैया की, चंद्रभागा मैया की, भक्त देवी रुंद देवी तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त रुंद की, हरिनाम संकीर्तन कलयुग धर्म की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन भक्त रुंद की। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, विट्ठल रुक्माई की, पतित पावन कलियुग अवतार निताई गौर सुंदर की, पंच तत्व की, निताई गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों का जय जयकार हो, सभी भक्तों का जय जयकार हो, सभी भक्तों का जय जयकार हो, गुरु और गौरांग का जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो प्रातकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा आप सभी का स्वागत है। बैठे हुए इंटरनेट पर सुन रहे हैं सभी का। तो अथॉरिटी की आज्ञा से इस आसन पर बैठकर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। पात्रता तो है नहीं, परंतु हमारी शुद्धिकरण के लिए, और प्रभुपाद ने, क्योंकि भागवत का वक्ता वही होता है जो निर्मत सराणाम सताम, भागवतम में कहा है। भागवत किसके लिए? निर्मत सराणाम सताम, उन पुरुषों के लिए है। लेकिन हम तो बहुत सारा अंदर मत्सरता है, विकार है, परंतु प्रभुपाद ने ये सेवा दी है सभी इस्कॉन मंदिरों में कि हम प्रातःकालीन भागवत कक्षा को सुने और दे, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, इसमें लिखा है लास्ट में। क्या लिखा है? सेवया। तो हम भागवत नहीं दे रहे, भागवत की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त ही भागवत, भागवत पूरी तरह से रियलाइजेशन है, साक्षात्कार पूर्ण प्रकृति है, प्रतिकृति है, विज्ञान है। तो हम अभी तो नौ शिक्षा लोग हैं, कनिष्ठ स्तर पर भक्त। तो हमारी शुद्धिकरण के लिए प्रभुपाद जी हमें सेवा प्रदान किए। भागवत देते देते भागवत के वाक्यों को श्रवण करेंगे तो मेरा हृदय शुद्ध हो, ऐसे आप भी प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमोतिकं करतले, वेणुकरे कंगनम्, सर्वांगे हरिचंदने सुललिते, कंठे च मुक्तावली, गोप्यश्री परिवेष्टितो सदा विजयते, गोपाल चूडामणि, गोपाल चूडामणि, गोपाल चूडामणि, गुरवे गौरचंद्राय, राधिकाए तदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय, तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं, पंगुं लंग्रयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 6 और श्लोक क्रमांक 13 तो मुझे कहा गया था, परंतु यहाँ आने के बाद कई दूसरा ही सुनने को मिला, परंतु मैं जिस पर अध्ययन करके आया हूँ उसी पर भूलूंगा, क्षमा करें। और इस अध्याय का नाम है पूतनावध। ईशाचरितं व्यतितस्तनाव्यसुर व्यादाय केशांचरनो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूप आस्थिता व्रज्राहतो वृत्रैवा पत्नृपा ईशाचरितं व्यतितास्तनाव्यसु व्यादाय केशांचरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता व्रजाहतो वृत्रैवापतन्नृपा ईशाचरितं व्यतितास्तनाव्यसु व्यादाय केशांचरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता व्रजा हतो रुत्रयिवा प्रतनुपा पढ़िए शब्दार्थ निशाचरी राक्षसी ने इत्थम इस तरह व्यथित स्तना स्तन पर दबाव पड़ने से दुखी वेसुह प्राण छोड़ दिया व्यादाय मुंह फैलाकर केशान बालों का गुच्छा चरणों दोनों पाँव भुजो दोनों हाथ अपि भी प्रसार्य पसार कर गोष्ठे गोचर में निज रूप आस्थिता अपने मूल आसुरी रूप में स्थित व्रज आहत इंद्र के व्रज से मरा हुआ उरुत्र वृत्रासुर इव सदृश अपतत गिरपड़ी नृपा हे राजन अनुवाद एवं तात्पर्य इस भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा राज बिहारी की सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की निताय गौर प्रेमानंदे अनुवाद इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पुतना ने अपने प्राण त्याग दिए हे राजा परीक्षित वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पाँव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी मानो इंद्र के व्रज से आहत वृत्रासुर गिरा हो अनुवाद दोहराएंगे इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पुतना ने अपने प्राण त्याग दिए हे राजा परीक्षित वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी मानो इंद्र के व्रज से आहत वृत्रासुर गिरा हो तात्पर्य पुतना दुर्दांत राक्षसी थी जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी किंतु जब वह मर गई तो उसकी योग शक्ति उसे छिपा न पाई जिसे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने नमामि विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचितोपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जब मैं ये श्लोक देखा तो सोचा इसमें तो केवल दो लाइन का तात्पर्य है तो क्या बोलूं। तो मैं जप माला उठाया और जप करने लगा। तो हरि नाम सच में भगवान रियल फ्रेंड है ना, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो या नाम के रूप में हो। सर्वदम सर्व देहिनाम भूतानाम दो जगह पर। तो मैं हरि नाम जपने लगा तो मन में इस श्लोक के प्रति विचार आने लगे कि क्या बोला जाए। लाइन तो दोनों तात्पर्य है। तो जो भी मुझे स्मरण हुआ वो मैं बोलने का प्रयास करूंगा क्योंकि भगवान ही प्रेरणा दिए। तो ये प्रसंग पूतनावत का चल रहा है। इससे भी पहले मैंने इसी प्रसंग पर शायद 10 दिन पहले क्लास दिया था। वह हरिनाम की ही महिमा गाई गई थी और वही हरिनाम। तो इस प्रसंग में पुतना को भगवान, मैंने लास्ट में कहा थी पुतना ने जो इच्छा की थी भगवान मेरा स्तनपान करे या पुत्र बनकर और बाद में उसके पिता का संपूर्ण राज्य जब छीन लिया तो वही पुतना, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, तो रत्नमाला हो सॉरी। तो ये रत्नमाला उस समय जो दो इच्छा की थी वो भगवान उसकी पूरी कर रहे हैं। भगवान किसी की भी इच्छा नहीं रखते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वो गलत भाव से क्यों ना आया हो भगवान के शरण में। ये तो गलत भाव से आई थी ना, और सही भाव से आने वालों की तो जरूर पूरी करते हैं। तो पुतना का यह रूप कपटपूर्ण है। असुर हमेशा, असुर और असुर प्रवृत्ति वाले लोग सदैव कपटपूर्ण भाव ही हृदय में रखते हैं। और ये कपटपूर्ण भाव जब तक वो उजागर नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता, क्योंकि बहिरूपया रूप लेकर ये लोग आते हैं। तो भगवान को मारने के लिए जितने भी असुर कृष्ण लीला में आए उन सभी ने अपना वास्तविक रूप लेकर प्रकट नहीं हुए, है ना। हर कोई देखिए, अगासुर हो, बकासुर हो, तुरनाव्रत हो, तुरनाव्रत तो वो भी अलग रूप लेके आया था, शक्टासुर हो, बकासुर हो, काकसुर हो, जितने भी असुर आए कुछ ना कुछ अलग रूप बनाकर आए। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम कृष्ण को छल लेंगे, लेकिन भगवत गीता के 10वें अध्याय में छलयताम छलोस्मि, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। तो इस संसार में जितने गुण अवगुण है सब भगवान से ही आते हैं, तो वही उनके अंश में भी होंगे, होते हैं। तो पूतना एक सुंदर, किसी को भगवान के अलावा ब्रज में किसी को समझ में नहीं आया, इवन बलराम जी को भी नहीं समझ में आया, नंद बाबा यशोदा को भी नहीं समझ में आया। पूतना एक सुंदर वर्णन करते हैं कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी थी, क्योंकि हाथ में कमल लेके आए थे, कमल घुमाते घुमाते ब्रज में प्रवेश की, और इतनी सुंदर जैसे कि स्वर्ग की या वैकुंठ की देवी लक्ष्मी हो, रूप ऐसा था सबको, क्योंकि कोई अद्भुत चीज यदि व्यक्ति देखता है तो देखने के बाद उसकी विचार शक्ति काम नहीं करती है, वो केवल देखते रह जाता है। तो सारे ब्रजवासी, कृष्ण का जन्म हो चुका था और कुछ उत्सव चल रहा था, तो बाल पालने में थे कृष्ण, तो रो रहे होंगे शायद। तो पूतना आई और सीधे अंदर जहां कृष्ण थे वहां चली गई। मैंने किसी को कुछ पूछा भी नहीं, कोई कहा है कृष्ण, क्योंकि असुर लोग होते हैं कपट पूर्णता, अपना कार्य पूर्ण करने के लिए बड़े माहिर होते हैं उनके पास। यहां मुझे तात्पर्य पढ़ते हुए माया, योग माया कहा है ना, लेकिन असुर लोग तो माया महामाया का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे थोड़ा पता नहीं, अभी मेरा डाउट कौन बाद में पूछो क्लियर, क्योंकि भगवान योग माया का सहारा लेते हैं या भगवान के भक्तों को योग माया का सहारा लेते हैं, लेकिन ये असुर लोग योग माया का सहारा, तो ये थोड़ा डाउटपूर्ण लग रहा है कि योग शक्ति द्वारा, योग शक्ति या वो तो माया शक्ति का इस्तेमाल करते हैं असुर रूप अपना रूप परिवर्तित करने के लिए। तो ठीक है, किसी सीनियर से पूछेंगे बाद में। तो पूतना योग माया के द्वारा या इस्तेमाल किया, इसलिए योग शक्ति के द्वारा अपना रूप परिवर्तित होकर भगवान को मारने के लिए आई, और जैसे ही भगवान को अपनी गोदी मिले तब तक किसी को नहीं समझ में आया, तो सब लोग आश्चर्यचकित थे, साक्षात स्वर्ग की देवी या लक्ष्मी मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आई। क्योंकि स्तनपान कराना केवल माता का कर्तव्य, अन्य कोई नहीं कर सकता है, लेकिन परनारी होते हुए भी वो आई और भगवान को सीधा गोद में उठाकर स्तनपान करने लगी। तो भगवान तो जानते थे, और भगवान ने आंख खोली नहीं थी, राइट, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी होने के कारण वो सब कुछ जानते हैं, देखेंगे सोचेंगे समझेंगे तब पता चलेगा, नहीं, भगवान तो जीवात्मा केवल इच्छा कर रहा है तब तक भगवान को पता चल जाता है। तो पूतना तो आई थी, भगवान ने कुछ नहीं कहा, निश्चिंत तो होकर उसकी इच्छा पूरी की स्तनपान कराने की, जो माता बनकर उन्होंने सोचा था। तो पूतना का ये भय जब ले जाती है तो यह कहा है गोचर, तो भगवान उसे वहां पर नहीं मारे, देखिए भगवान कितना सोच समझकर कार्य करते, यदि घर में उसे मारते तो घर भी टूट जाता, और घर के सारे सदस्य जहां पर जितने ब्रजवासी उपस्थित थे वो भी मारे जाते। क्यों? क्योंकि पूतना तो एक योग शक्ति से रूप को छोटा करके आई थी, लेकिन हो थे कितनी हो, 12 योजन लंबी, एक योजन मतलब 8 किलोमीटर ना, 8 माइल, तो 96 माइल, यहां से विरार पकड़ लीजिए, इतना लंबी थी वो, तो सोचिए वो यदि उस घर में भगवान उसको स्तनपान करके वदरी स्तन दबा देते तो कितने ब्रजवासियों का। लेकिन भगवान क्या बोले, वचन क्या दिए, मैं मेरी भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूं। तीनों कार्य यहां पर पूरे कर रहे, असुरों का संहार भी कर रहे और भक्तों की रक्षा भी कर रहे है ना, और धर्म की स्थापना भी कर रहे। भले ही धर्म का रूप लेकर, क्योंकि लक्ष्मी का रूप आई थी, तो लक्ष्मी तो कोई अधार्मिक है ही नहीं, धार्मिक है, तो उसका रूप आई तो धर्म को भी रक्षा किया, तो मारा नहीं। बाद में जाके गोचर भूमि, गोचर मतलब गाय चारण की एक अलग सी भूमि होती थी है ना वैदिक काल में, जैसे हमारे खेती के लिए हमारी अनाज उत्पन्न करने के लिए भूमि है, वैसे गो को भी अपने स्वतंत्र भूमि होती थी, चाहे वो चरती थी, घास खाती थी, उसलिए गोचारण भूमि कहते हैं। तो वो वहां पर देखिए, वह अनाज को भी तकलीफ नहीं दिया भगवान ने, क्या कि अनाज फसल भी नष्ट हो जाए, वो भी नहीं हुआ। गोचारण भूमि एकदम खुली होती है, उसमें घास उगती है बस। तो उस गोचारण भूमि में जाकर पुतना को गिरा दिया, और या बता रहे ना कि उसके सारे बाहें सारे मुंह, उसका ओरिजिनल रूप प्रकट हो गया। तब सब भयभीत हो गए। ओरिजिनल रूप तो तभी प्रकट हुआ जब वो जैसे ही बाहर निकली, छोड़ रहे मुंच 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 कर रहे थे, अरे छोड़ रहे छोड़ रहे। भगवान जिसको एक बार पकड़ते हो छोड़ते नहीं है, है ना, ये भगवान का एक गुण है। एक बार जिनके शरण में आ गया, भले वो किसी भी भाव से आए, कपड़ भाव से आए, अकामो सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी, तो जिस भाव से भी भगवान के शरण में आता है, भगवान उस भाव से उसको जरूर ये थामा प्रपद्यंते स्थाम तथा इव भजाम्यम, भगवान उसी भाव से देते। तो पूतना जिस भाव से आई थी, दोनों भाव लेकर, दोनों भाव की पूर्ति भगवान ने की। और भगवान अदोषदर्शी है, तो भले वो जिस भाव से आई भगवान ने वो नहीं देखा, भगवान ने क्या चुना, उसका सही भाव चुना। जैसे हंस पानी और दूध होता है, केवल दूध को चुनता है, पानी को नहीं, उसी प्रकार भगवान भी अदोषदर्शी होने का गुणग्राही है, अदोषदर्शी गुणग्राही है, भगवान के गुण है। तो दोषों को ना देखते हुए उसके गुणों को देखा, ये माता बनाकर मुझे स्तनपान पिलानी आई, तो भगवान ने उसको धात्री का पद दिया। और इसी गुण के वजह से परीक्षित महाराज को, जो सुखदेव गोस्वामी इसी गुण को सुने, तब आकर्षित होकर पुनः अपने घर इसी भागवतम को श्रवण करने के लिए घर पधारे। ये अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये श्लोक है ना। तो भगवान की यहां महानता और भगवान के गुणों का उत्कृष्ट रूप या झलकता है। तो भगवान बहुत दयालु है, असुर मारने भी आए तो उनको कृपा प्रदान करते, तो जैसे इसे धात्री का पद अपने भगवत धाम ने दे दिया, तुरंत दे दिया। देखिए पूतना को कोई हमारे जैसे साधना भक्ति, रागानुका भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं करनी पड़ी, शायद पता नहीं किसी जन्म में किया होगा तो मालूम नहीं, लेकिन उसी जन्म में राक्षसी का भाव लेकर आए। तो भगवान के समक्ष जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है या देह त्यागता है, वो भगवत धाम जाता है। महाभारत के युद्ध में इतने सारे 1,64,20,000 लोग या क्षत्रिय मरे, वो सब भगवत धाम गए। तो भगवान अदोषदर्शी इसीलिए कहते कि भगवान के सामने कोई भाव से आए तो उसकी तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं अच्छे भाव से, जैसे हम भक्त लोग भगवान के पास अच्छे भाव से आए, लेकिन कुछ कुछ आते कपट भाव से भी आते, अपना इच्छा पूरी करने के लिए या गलत भाव से, तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते। कितने सारे भक्ति के लिए हरे कृष्ण में आते हैं, ऐसा नहीं कि सब आने वाला शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ही आ रहा है, ये हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन ठाकुर जरूर पहचानते हैं, है ना। तो इस घटना से हम ये सीखते हैं कि जितने भी असुर या असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनकी कपटता भगवान के सामने प्रकट हो जाती है, जिस प्रकार ये पुतना की प्रकट हुई, है ना। ब्रजवासियों को किसी को पता ही नहीं चला कि ये असुरी नहीं होगी, एक तिल मात्र भी संशय नहीं आया। इसलिए पिक्चरों में या कहानियों में शायरी बोली जाती है, उसमें लिखा है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसमें तो आएगी सच्चाई है। तो भले ही कोई बहरूपिया बनकर बनावटी बनकर आए, लेकिन भगवान के सामने असत्य कपट कभी टिकता नहीं है, कभी ना कभी उजागर हो जाता है। तो ये असुर लोग हम देखते हैं भगवान की अनेक अनेक लीलाओं में, जैसे रामायण में सुपर्णखा भी सुंदर रूप बनाकर आए थे, राइट। भगवान जान गए थे, लेकिन भगवान को एक संदेश पहुंचाना था रावण के पास, तो उन्होंने समझ लिया कि एक मैसेंजर का काम करेगी। तो बहुत उन्होंने बहुत सुंदर रूप बनाकर आई देवी का, और लुभाने लगी राम को कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि भगवान तो सुंदर है ना, सर्वांग सुंदर है। भगवान 32 लक्षण जितने हैं वो सभी सुंदर है भगवान के अंगों में। तो भगवान इतने सुंदर है रामचंद्र की, उनको देखकर वो मोहित हो गई राक्षसिनी, क्योंकि ये असुर प्रवृत्तियां, असुर लोग जो होते काम और क्रोध और विकारों से भरे पड़े होते हैं, तो ये कामुक ज्यादा होते हैं। तो भगवान के सुंदर को देखकर वो बढ़िया रूप बनाकर आई ताकि कृष्ण राम मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। परंतु जैसे राम के पास आए, राम ने तो बोल दिया मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी सीता और उससे भी ज्यादा सुंदर थी, तो वो एक स्त्री दूसरी सुंदरता को देखती है तो ईर्ष्या होती है, तो वो ईर्ष्या मन में करने लगी सीता के प्रति, इसे मार डालू, यही मेरे राम और के मेरे बीच का रुकावट है, रोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई हैं, इनसे पूछिए। तो वहां पर लक्ष्मण जी ज्यादा वार्तालाप न करते, लक्ष्मण तो एकदम तड़की फड़ निर्णय लेने वाले थे, भगवान ने तो थोड़ा परिहास किया सुपर्णखा के साथ, है ना, परंतु लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, तब उसका असली रूप सामने आ गया सुपर्णखा, है ना। तो ये असुर लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण करने के लिए, देखिए किसी को कपट रखना पड़ता है इसीलिए कि वो इंद्र तृप्ति चाहता है। जिसके मन में इंद्र तृप्ति की भावना नहीं हो वो सरल होता है, सच्चाई दिल से भगवान की सेवा करने की भावना है वो कपट नीति नहीं अपनाता है। लेकिन जिसको पोस्ट पोजीशन भोग श्री विलास अमेरिका वीजा, वो देखिए अथॉरिटी के पास बड़ा बहिरूपिया बन के जाता है ना। समझदार अथॉरिटी समझ जाते इसको कुछ चाहिए, इसलिए थोड़ा है गुणगान कर रहा है, ज्यादा सेवा कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है। तो कपट्टा हृदय में वही व्यक्ति धारण करता है किसको कुछ अपना उल्लू सीधा करना है, स्वार्थ पूरा करना है, और भगवान को पसंद है सरलता, है ना। हम उसका भी उदाहरण देखेंगे। तो ये एक हो गया सुपर्णखा का उदाहरण असुर में। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला और अमृत प्राप्त करने के लिए असुर लोग छटपटा रहे थे, उसमें से दो असुर थे जिन्होंने भगवान की या देवताओं की प्लान जान लिया, वो समझ गए कि अमृत हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, रूप बदल दिया। किसने? राहु केतु ने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गए। परंतु वही है ना, भगवान के सामने कपट असत्य कुछ क्षण भर के लिए भी नहीं टिकता है, भगवान ने तुरंत पहचान लिया। भगवान ने नहीं पहचान, दोनों आजू बाजू ने पहचान, लेकिन भगवान ने वह उनको मार दिया। तो मतलब यही है कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए रूप बदला जाता है। तो ये इंद्र तृप्ति गर्हित है, ये भक्ति में काम नहीं आती है, और भक्ति करते हुए भी हम भी कई सारी कामनाएं हृदय में रहते हैं। अशेष कामना हृदय माजी मोर क्रोधी दम्भ परायण, भजन में कहा है। तो ये पिशाचिनी कही गई है, जो भोग वृत्ति कपट कुटी नाटी ये सारे जो है, क्योंकि कलयुग के जीवों में भले ही अन्य ग्रहों में असुर अलग और सुर अलग होते थे, लेकिन कलयुग में क्या है ना, हमारे हृदय में ही दोनों वृत्ति है। हम बाहर से भले ही कितने भक्त का रूप प्रकट करें, तिलक कंठी सब, और भक्ति कर रहे हैं अच्छे भाव से, लेकिन हमारी जो वृत्ति है अंदर हृदय के, असुर की भी है और सुर की भी है। ये तब पता चलता है जब देखिए हम भक्तों के बीच में तो बढ़िया से चैंटिंग करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, भागवत सुनते हैं, जब एकांत में रहते हैं ना तब हमारा असुर ऊपर आता है ना। आपका नहीं आता लेकिन मैं अनुभव करता हूं, जब चैंटिंग करो तो चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, वो मोबाइल में हाथ लगाएगा, उधर कुछ देखेगा इंटरनेट में, चैंट उसको छोड़ दो तो मन में कुछ गलत गलत भाव सोचेगा। तो ये असुरुति तब, और हमारा मन हमें तब धोखा देता है एकांत, इसलिए कहते हैं एकांतिर वक्ति उत्पाते व कल्पते। तो जब तक हम शुद्ध ना हो जाए या कम से कम मध्यम स्तर से ऊपर ना पहुंच जाए तब तक एकांत भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा असुर हमारा रूप पलट देता है, बहरूपया बनकर हमें ही परेशान करता है। तो भगवान के, इसलिए यहां पर और तीसरा उदाहरण इंद्र का भी दिया है। इंद्र भी कभी कभी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कपट रूप धारण करता है, राइट। जैसे उसे कोई इंद्र तृप्ति करनी होती है, धरती पर कोई सुंदर नारी दिख जाए, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, क्योंकि व्यक्ति ओरिजिनल भाव में जा नहीं सकता है, क्योंकि सत्य भाव से कभी असत्य नहीं होता है, गलत करने के लिए असत्य का ही सहारा लेना होता है, सत्य के जरिए कोई, क्योंकि रावण रावण सोच रहा था ना शायद कि मैं अलग प्रसंग हो जाए। तो ये इंद्र जो है गौतम ऋषि का ही रूप बनाकर, बहरूपया रूप बनाकर, तो बहरूपया रूप बनाकर भोग करने के लिए आया। वही इंद्र पृथ्वी राजा की यज्ञ में घोड़ा चुराने के लिए बहिरूपे कितने रूप बदले। तो यही है कि असुर लोग या असुर प्रवृत्ति जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए धारण की जाती है। तो भक्तों के बीच में भी हम, हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हम जब कुछ इंद्र तृप्ति चाहते तो अपने अथॉरिटीज को, गुरुस को ठगाते, परंतु गुरु अथॉरिटी और कृष्ण भगवान ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, भगवान ने इनके पास पावर दी होती है, वो सत्य को तुरंत समझ जाते हैं। तो पूतना कि इस प्रसंग में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के पास जैसे भाव है वैसे भाव से जाना चाहिए, कपट पूतनता। क्योंकि भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है, श्रेयान स्वधर्म विगुणा परधर्मास अनुष्ठिताम स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयाव। हम गलत है चलेगा, गलत भाव से जाओ लेकिन कपट रूप भाव से नहीं जाए। स्वधर्म जैसे हमारा धर्म, हम हमारे अंदर गलतियां है लेकिन हम किसी का देखा देखी करके जाएंगे तो उसमें फंसते, इसलिए कहे परधर्म भयाव। तो असुर लोग क्या करते, दूसरे का धर्म मतलब देवताओं का रूप धारण कर लेते, सुंदरता का धारण कर ले लेकिन अपना रूप नहीं प्रकट करते, लेकिन असली रूप प्रकट हो ही जाता है। तो भगवान ने पुतना का असली रूप प्रकट कर दिया। भगवान को भक्त जैसा भी हो, जिस भाव का हो, जिस क्वालिटी का हो, सरलता भगवान को ज्यादा पसंद है। रामायण में देखिए शबरी की एक भक्त थी, शरीर से भी बूढ़ी थी, रंग रूप से भी कुरूप थी, ज्यादा इतना सुंदर नहीं थी और ज्ञान तो था ही नहीं, परंतु भगवान को पाने की और गुरु की आज्ञा को पालन करने की जो उसके हृदय में इच्छा थी, सही भाव था, देखिए सरलता। इसलिए भक्त या भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है ना, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग्स। क्या कहता है, सरलता ही सर्वोत्तमता है। जितना हमारा हृदय सरल होगा उतनी भगवान की कृपा हम पर होगी, उतना हमारा भजन में और भक्ति में प्रगति होगा। दूसरा चैतन्य चरितामृत और चैतन्य लीला में भी एक प्रसंग आता है, श्रीरंगम का ब्राह्मण, पढ़ना लिखना आता नहीं था, उसके सामने श्रीरंगम के सारे विद्वान ब्राह्मण थे, वेदांत वेद विज्ञान थे, और ये ब्राह्मण थोड़ा टूटा फूटा आता होगा पढ़ना, लेकिन गुरु ने आदेश दिया था रोज भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता पकड़ता था, उल्टी पकड़ता, सीधी पकड़ता, कुछ भी हो बोलते रहता, पढ़ने के लिए बोला पढ़ते रहता। लेकिन वो बंद करके फिर वो पहला चित्र जो है गीता का, उसे देखकर रोता था। क्यों? तो भगवान कितने महान है, वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदों का सार क्या है, क्या है? कृष्ण को जानना। वेदेच सर्वेर अहमे वेदो वेदांत वेद कृते विदेह चाहम। तो भगवान को जानना ही वेदों का तात्पर्य है। वेदों को संकलन किया इसीलिए गया है कि हम कृष्ण तक पहुंचे, है ना? ना अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान ही याद करना है और भगवान को ही स्मरण करना है। सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जाते चित, यही सूत्र है मेन शास्त्र का। तो वो ब्राह्मण वही कर रहा था, वो देख चित्र देख कर खाली रोता था। तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रुके थे श्रीरंगम में, तो जब आते थे एक दो दिन देखा ये ब्राह्मण रोता क्यों है। तो भगवान के मन में, भगवान तो अंतर्यामी जानते थे, लेकिन जस्ट इच्छा पूछने के लिए उसकी जान चले गए। और जब उसके पास गए तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी आप ये भगवत गीता को पकड़कर रो क्यों रहे? तो उसने कहा, मेरे गुरु ने आदेश दिया था कि प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो। मैं पाठ करता हूं, पढ़ना लिखना तो आता नहीं इतना पढ़ना, परंतु गुरु का आदेश पालन करने का प्रयास करो। लेकिन ये चित्र देखता हूं तो मुझे भगवान की महानता का, भगवान कितने ग्रेट है कि अपने भक्त के लिए वो स्वयं सारथी बन गए। कोई ड्राइवर बनता है, कोई मालिक कभी ड्राइवर बनेगा? ड्राइवर को ड्राइवर आज तू पीछे की सीट पे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूं, ऐसा कोई मालिक बोलेगा संसार का? नहीं बोलेगा, भी तो थप्पड़ खाएगा या नौकरी से निकल जाएगा। परंतु भगवान देखिए, कृष्ण अपने भक्त के लिए सारथी भी बन गए। मैं सुना हुआ ऐसा कथा में, पढ़ने में तो अभी तक आया नहीं। ये सारथी का काम बड़ा कठिन होता है, राइट? सारथी जब चलता है तो ऊपर वाला युद्ध करने में मग्न होता है, जब उसे राइट मुड़ना है तो बोलते हैं कि राइट पैर मारता है, पैर मारना पड़ता है उसको सिग्नल, जैसे हम इंडिकेटर देते हैं राइट मुड़े, तो वहां इंडिकेटर तो रहता नहीं है और बात भी नहीं कर सकते, ध्यान पूरा तो युद्ध में लगा हुआ है। और जब उसका रथ मोड़ना हो तो राइट मारते हैं, लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट पैर मारते हैं। तो देखो सारथी को लात खानी, तो भगवान ने अपने भक्त की लात, ऐसे मैं सुना हूं, अभी वो ऑथेंटिक है नहीं है बाद में बात है। तो भगवान मतलब सारथी का कार्य, तो भगवान अपने भक्त के लिए सारथी भी बन जाते हैं। तो ये महानता को देखकर, ये महान गुण को देखकर मैं रोना आता है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए, उसको आलिंगन दे दिए और आलिंगन देखे कि तुम बिना पढ़े ही बिना जाने गीता का मर्म जान गए। तो जानना है कि कृष्ण की महानता है ना, हर समय कृष्ण याद हो यही हमें होना चाहिए। तो इसमें उस ब्राह्मण की अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान का आलिंगन प्राप्त कर लिया, भगवान का प्रेम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिसको स्पर्श करते थे क्या होता था, ट्रांसफर हो जाता था, है ना? प्रेमा अवतार थे ना वो, प्रेमा अवतार थे। तो प्रेम अवतार होने जिसको भी स्पर्श करते उसके अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। तो ब्राह्मण के हरी हरी, और कई सारे प्रसंग है, समय की सीमा समाप्त हो रही है। तो हम इस श्लोक से, तात्पर्य छोटा था लेकिन मैं बोला ना हरिनाम लेते लेते मेरे मन में इस प्रकार के विचार आए, तो मैंने इस कागज पर उतार कर वही कहा कि भगवान की यहां पर महानता देख, महानता है, क्योंकि भगवान की कथा केवल कथा के लिए नहीं होती है, उसमें कुछ बोध होता है, कुछ शिक्षाएं होती है। तो भगवान के हर कार्य के प्रति बहुत कुछ कार्य होते, एक साथ कई कार्य होते हैं। तो यहां पर भगवान ने पुतना के वध के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं दी कि हमें भगवान के सामने सरल भाव से जाना चाहिए, कपट भाव से नहीं। भले भक्तों के साथ भी हो, गुरु के साथ भी हो, या अथॉरिटी के साथ भी, कपट भाव से ना जा, कुछ इंद्र तृप्ति की अभिलाषा रखकर कपटपूर्ण कहने को हमें भजन में बाधा देता है, और सत्य हमेशा प्रकट हो जाता है, असत्य प्रकट हो जाता है, हमेशा सत्य बोलना है। ये इस कथा से हमें सीखने मिलता है। हरे कृष्णा। अभी कोई किसी का प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिए। ओके तो मेरा टिप, मेरा जो डाउट था वो क्लियर करेंगे तो अच्छा। या योग शक्ति इस्तेमाल किया है, असुर लोग तो माया शक्ति का इस्तेमाल करते रूप बदलने, तो यहां योग शक्ति मेरा ही प्रश्न है।
हम अक्सर शास्त्र में, हम हमेशा शास्त्र में देखते कि जो पूतना जैसे असुर हैं ये अलग अलग रूप धारण करते हैं। अगासुर ने अजगर का रूप धारण किया, पूतना ने ऐसा रूप धारण किया लक्ष्मी का, तो इन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की होती है और इसके चलते इनके पास सिद्धियां मिलती है। जो अष्ट सिद्धि है ये सिद्धियां इनके अंदर होती है, तो वो सिद्धि के अनुसार अनिमा प्राप्तवशिता वगैरह जो अष्ट सिद्धि है इसके चलते ये अपना अपना रूप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग अष्ट सिद्धि के अंदर आते हैं। लेकिन ये अष्ट सिद्धि भी भौतिक ही है ऐसा, और ये तपस्या किए हुए रहते हैं, खाए पिए उपवास नहीं, मतलब उपवास किए रहते, चार नियम पालन किए रहते तपस्या के समय, सब किया रहता है। इसीलिए सिद्धि कभी भक्त नहीं चाहता, भक्त केवल भक्ति चाहता है ऐसा।
तो योग शक्ति मतलब अष्ट सिद्धियों की योग शक्ति दी है, क्योंकि योग का शब्द जब सुनते हैं तो योग मतलब दिव्य स्तर पर भगवान से निगड़ित होता है।
योग ये संस्कृत शब्द जो है वो युज नाम के संस्कृत धातु से आता है, इसका मतलब है
जुड़ना,
जुड़ना हमारी चेतना भगवान के साथ, चेतना जोड़ना मतलब युज बोलते हैं, और उसका योग बन जाता है फिर कर्म योग ध्यान योग।
हमें असुर का वर्णन आता है तो असुर तो योग शक्ति को नहीं तो धारण करते हैं,
असुर तपस्या घोर अघोरी तपस्या करते हैं। जैसे भगवद गीता में तामसिक तपस्या राजसिक तपस्या बताए, ये रजोगुनी और तमोगुनी तपस्याएं करते हैं और उसके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा सब करते हैं। जैसे आजकल के विद्यार्थीगण 12वीं में नीट में पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करेंगे तपस्या करेंगे फिर कुछ इंद्रिय तृप्ति का साधन लेंगे, या कोई राजनेता हड़ताल करेंगे तपस्या ही कर रहे हैं ना।
ओके धन्यवाद हमारा निरसन करने के लिए। ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा राज बिहारी की, हरे कृष्ण।